السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل في علاه سنيا إذا عاملته وجدته وفيا وإن عاهدته وجدته وفيا فترة من بعد جوده تملأ الأرض لكن نظرة بعين رحمته تسير الكافر وليا الجنة لمن نتاءه ولو كان شريفا قرشيا والنار لمن نصره ولو كان شريفا قرشيا النار لمن نصره والجنة لمن نتاءه صلى الله على النبي الكريم المسلم تسليما بعد الحمد والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں پردہ نشین خواتین اور بہنوں, اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ ذکر کا ہے اور ایک راستہ فکر کا ہے. ذکر اور فکر جب جمع ہو جاتے ہیں تو بہت پرواز میں سرعت پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے بہت سے عنوانات کے تحت بے شمار مضامین آپ نے سماعت فرمائے ہیں اور آج جس حصے کا تذکرہ کرنا ہے وہ ذکر والا باب ہے. ذکر کا لفظ سننے کے بعد ان لفظوں کی طرف ذہن جاتا ہے. ایک لفظ ہے ذکر اور دوسرا لفظ ہے ذاکر اور تیسرا لفظ ہے مذکور. ذاکر کے معنی ہے ذکر کرنے والا اور مذکور کے معنی ہے وہ ذات جس کا ذکر کیا جائے, وہ شے ذکر جس کو یاد کیا جائے. ذکر ذاکر اور مذکور کی درمیانی نسبت کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی بہت سی آیتوں میں وہ الفاظ آئے اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کے تعلق سے بہت سی باتیں واری تھی. ذکر کے معنی یاد کے ہیں. سب سے پہلی بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ سکتی ہے کہ میں یہ یاد کیوں کرنا, کیوں کریں اللہ کو یاد. اس کا سیدھا اور سادہ جواب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ احسان کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہے. کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے, چاہے چھوٹا احسان کرے یا بڑا, وہ چیز حدیثاً توفتاً چھوٹی سے چھوٹی چیز دے یا بڑی سے بڑی چیز دے, آدمی سوچتا ہے کہ صاحب جس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو جس طرح فطرت انسانی میں یہ بات ہے کہ وہ سن کو یاد کرنا فکری تقاضا ہے, اسی طرح اللہ پاک بھی اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں, آتے ہیں کہ مجھے یاد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت سے احسانات کیے. ناشکری نہیں کرنا, इसीलिए अलगुरुनी अलगुरुकम के अंदर वशगुरु ही वला तत्सुरु नाया शुक्रगुजार बनो ला तत्सुरु नाशुक्री मत करो। वहां लफ्ज कुफर जो है अपने इस्तेलाही मायना में नहीं है बल्कि वर्फी मायना में कुरान और हदीस के रोशनी में कुफर के शुक्र के मुकाबले पर इस्तेमाल हुआ जो ना शुक्री के मफहूम में इसकी अपनी असली मुराद की अपने बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हुई है लेकिन यहाँ ये मुराद की है कि तुम नाशुक्री मत करो इसलिए कि मेरे बेशुमार एहसानात है नाशुक्री नहीं करना ला तक फुरो। तो एहसानात इलाहिया को याद करना ये उसके शुक्र करने में मुहमीस का काम देता है। कैसे याद करना मेरे पास जो चीजें हैं वो बहुत सी चीजें सैकड़ों हजारों लाखों लेकिन उसमें खास तौर पर अपनी जात पर गौर करेंगी तो आपको चार चीजें अपने पास नजर आएंगी आपके अंदर में एक आसार दूसरे अफाल तीसरे सिफात चौथे वजूद ये चार इनामात है अल्लाह और हर इनाम सैकड़ों हजारों इनामात पर लाखों करोड़ों की कीमतों पर मुश्तमिल है। हम कीमतों का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब डॉक्टर एक सांस की कीमत का अंदाजा देने लगे दिल की धड़कन का अंदाजा देने लगे नब्ज की एक हरकत का अंदाजा दे रहे एक सेकंड में हयात दुनियावी के लिए किसी के साथ रोकना चाह रहे हैं तो उसके बारे में वो कितनी कीमत मांग रहे अगर से चल चला तो उसके बाद सब नक्शा फेल ही है मनसूबा अल्लाह का कामयाब होता है। इंसानों की क्या मेहनत है लेकिन कीमत का अंदाजा करना चाहिए आदमी को कि अल्लाह पाक ने जो नेमतें क्या फरमाई है आसार वाली नेमत अफआल वाली नेमत सिफात वाली नेमत वजूद वाली नेमत ये तो अपने अंदरून में है। अब बेहन की जो दुनिया है वही दौतु नेमत अल्लाह तो सुहा किसी एक नेमत का भी गिनना किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला का करम है कि उसने ये इनायतें हमको दी रहम फरमाया करम फरमाया उनको क्या करना है शुक्र अदा करना है। शुक्र अदा करने के दो तरीके एक अल्लाह को याद करना जिक्र के जरिए दूसरे अल्लाह को पाना फिक्र के जरिए। जिक्र के जरिए से विशाल फिक्र के जरिए से विशाल जैसे ये बुजुर्ग जिक्र का तलबा है ज्यादा जिक्र कराते हैं साथियों एक रास्ता जिक्र का भी है दूसरा रास्ता फिक्र का भी मतलब मतलूब हासिल हो जाए मकसूद मिल जाए। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह को याद करने के लिए इतनी मतलब एहकाम दिए गए हैं कहीं पर तरजीबी तौर पर है कहीं पर तरहीबी तौर पर है तरगीबन कहीं पर है कहीं मिसाल के तौर पर आया है जहाँ पर ईमान वालों की सिफात का जिक्र आया और उनके आमल सालेह की जजा का जिक्र आया तो खासतौर से ईमानी नमदस सिफात का जिक्र किया गया मुसलमान पहले ईमान की उसके बाद आखिर में जुमला आया है बदला की नल्ला तफीर बदला किरा जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाले औरतें बदला की नल्ला तफीर बदला किरा अल्लाह ने उनके लिए मौफिरत तैयार कर रखी है अल्लाह ताला बख्शिश का मामला करवाएंगे और बदल जो देंगे वो इतना बड़ा है कि वो हमारे जहनों में नहीं आ सकता। हदीसों में आया है कि मोमिन को जो जजा दी जाए जन्नती को जो जन्नत दी जाए जाने से मुसलमानों को मोमिनीन सालेहीन को जो नियमतें अता की जाएंगी उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समियत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। वो चीज ऐसी है कि जिसको किसी आंख ने देखा नहीं, वला उज़ुनुन समियत, न किसी कान ने सुना, न किसी के कानों ने सुना। वो चीज है जो कुछ सुना गया महदूद है, जो कुछ देखा दिखाया गया महदूद है, जो कुछ बता बताया गया बहुत महदूद है, लेकिन जो चीज तैयार है वो उसकी कोई हद नहीं है। वला खतरा अला कल्बि बशर, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी इंसान के दिल पर भी नहीं गुजरा जन्नत में क्या है। वला खतरा अला कल्बि बशर, बाकी आयतों में आया है वला खतरा अला बाल बशर, बाल दिल को बोलते हैं अरबी में। एक बाल इब्राहिम भी है जो पर के मानों में इस्तेमाल करते हैं, दिल के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। वला खतरु अला बाल बशर कमा क़ाल अलैहि सलाम। और जहां ईमान वाले का जिक्र आया वहां पर जिक्र के वस्त को हुक्म को बहुत ज्यादा वाज़ेह किया गया है। जैसे यहाँ आप ढूंढ कर निकाल लेना कलाम पाक में बाद में कुफार हज़रात मौजूद है, यहाँ युहर लदीना आमनु उल्कुरुल्लाह जिक्रन कतीरा, अल्लाह को याद करो अरे ईमान वालो। अच्छा, ईमान के बाद बहुत सारे आमाल है, الايمان بالله سبحانه وشهادة النبي قول لا اله الا الله وادنا ايمان في اللذان الطريق، ايمان کے 70 سے زیادہ شاخ ہیں، اعلی شاخ جو ہے وہ کلمہ طیبہ، اور ادنا شاخ ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا جائے، وادنا ایمان کو کل ادا عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، وہ ایمان کا چھوٹا درجہ ہے ادنا درجہ ہے۔ محمد الرسول اللہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ، اور اس کے ذریعے سے جو نعمتیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اتنی بے کرم اور بے نہایت ہیں کہ کچھ مت پوچھئے۔ جہاں ایمان ہوا اس کے بعد اعمال شروع ہو جائے تو جزا ملے گی آخر میں، کبھی دنیا ہی میں جزا کے کچھ آثار اور برکات شروع ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور یہ حشر کے میدان میں اٹھنے کے بعد پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ ہی جاتا ہے۔ بلبت یوم اذن الحق، وہ دن بالکل برحق ہے، میزان عمل قائم ہوگا، اعمال کی ترازو قائم کی جائے گی، اور وزندار چیز کو بھی وزندار چیز بھی ظاہر ہو جائے گی، بے وزن چیز بھی ظاہر ہو جائے گی۔ حق اللہ فرما رہے ہیں ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب یاد کرو اللہ کو، اچھا اگر یاد نہ کرے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے کفار کے بارے میں ذکر آیا ہے اور ایک حصہ منافقین کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ کفار کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے کہ قیامت کے دن ہم جہنم پیش کر دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری یاد سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کو پیش کریں گے، جہنم الانوار الذین کانت عینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماع، سنتے نہیں تھے، اللہ کو یاد کرنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا ان کے اندر، کفر کی اس سطح پر پہنچ گئے، ایمان اتنا بھی نہیں تھا کہ اللہ کو یاد کرے۔ اللہ اللہ کرے، اور ایک منافقین کا تذکرہ جہاں پر آیا ہے وہاں عجیب بات لکھی ہے، منافقین کی کچھ صفات ہے نا، اس میں سے دو صفات کا ذکر ہے وہاں، دو تین صفات کا، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त खड़े होते हैं, और दूसरी बात यह होती है कि रियाकारी से पेश आते हैं, उनका काम रियाकारी का होता है, इखलास वाले जज्बात में रहते हैं, और तीसरी बात यह है वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, अल्लाह कौन का जिक्र बहुत थोड़ा करते हैं। अब नहीं कर रहे हैं तो किधर जा रहा है आदमी, थोड़ा कर रहे हैं तो किधर हो रहा है आदमी। आप उसके बावजूद इस फिक्र में है कि जिक्र जरूरी है नहीं है, आदमी बिल्कुल आप अपनी फिक्र से हट रहा, अपने अमल से हट रहा, अमल से हट रहा, अमल सालेहा से दूर हो रहा, ईमानी मकसद से दूर हो रहा, क्योंकि करना क्या अल्लाह को खूब याद करना, नहीं याद करे तो अल्लाह फरमाए तो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं और दिल यादी लादी से गफलत की वजह से सख्ती में है, सख्ती में दिल सख्त खराबी में बे बड़ी खराबी, जहन्नम का गड़ा भी हो सकता है, खराबी के मानों में भी हो सकता है, और उनके कसावत कल्बी और दिल की शक्ति को बताने के लिए भी और इंतहाई बुरे नतायज सामने आने की निशानदेही है। खुली गुमराही में है वो लोग, अल्लाह की याद से गाफिल है, वो दिलों में शक्ति पैदा हो गई है। ये लोग बोलते ना साहब दिल रोज सख्त हो गए साहब, वजह क्या है जी, जिक्र नहीं तो नरम का जो होगा बेचारा, दिल हुआ जिक्र हुआ तो दिल नरम पड़ेंगे, जिक्र ही नहीं करेंगे तो नरम का जो पड़े। अली साहब रहमतुल्लाह एक मतलब किसी ने पूछा कह रखिए जिक्र कराते आप जिक्र कितना कितना देरी करना रोजाना कितना करना, मिसाल के तौर पर रोज कितना करना, अरे फरमाए रोना है बाद उठ जाओ, रोना है बाद उठो, यह है आसान तरीका जिक्र का। जिक्र करा के ये रुला के बुझा दे, जिक्र इतना करना कि आदमी के अंदर रिक्कत पैदा हो, ये जरबे इस बात से लगा राज अरब का जहर का लहर का क्या हुक्म है, क्या हुक्म कुरान का एक सबब है, वो सबब है, वो मकसूद नहीं होता, गर्दन हिलाना मकसूद नहीं है, ये भी गर्दन हिलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मकसूद अपने समझते हैं, गर्दन हिलाना मकसूद नहीं है। हजरत मौलाना अबुल हसन अल नदवी मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अल मारूफ अली मियां रहमतुल्लाह के सामने जब हम लोगों को मेरा ख्याल सामने आए तो फरमाया कि असल बात यह है कि आप लोग मकसूद और सबब के दरमियान फर्क करते है ना, इसीलिए हमको ये हमें तवक्को है कि आप लोग ठीक रास्ते पर है, गलत रास्ते पर नहीं, इसलिए कि आप लोग मकसूद और सबब के दरमियान में फर्क समझते हैं, और उसी फिक्र के साथ बहुत सारे सालिकीन को लेके चलते हैं। मकसूद जरब नहीं है, मकसूद गर्दन का हिलाना नहीं है, और मकसूद जी बस आप किसी गर्दन पीछे लुढ़का कर कोई चीज फेंकने का तस्वीर देना, वो कोई मकसूद असली नहीं है, मकसूद असली अल्लाह तले की जान है, और अल्लाह अल्लाह करने से होता क्या है बोले तो अल्लाह तले की मोहब्बत कहीं पैदा होती, तो जिस चीज का जिक्र ज्यादा होता है उस और याद का बल बना रहता है उसके ताल्लुक से उनस और मोहब्बत की मिलाप होना शुरू हो जाती है ना। अब लोगों को क्या है बोले तो औलाद 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 मेरा ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा बोले तो दिल को लगा लेता है भी? पैसा 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 जमीन जमीन ये जमीन मेरी ये जमीन मेरी ये जमीन मेरी दिल को लगा लेता है, ये जायदाद मेरी ये जायदाद मेरी ये जायदाद ये जायदाद मेरी बच्चों से लगा लेता हो काय को लगा लिया, वालिद साहब फरमाते हो मेरा निकल जाता तो झगड़ा खत्म हो जाता, मेरा लगा लेते हम लोग परेशान है। वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जी बकरी घूमी बकरी गुम गई बोले तो कुछ अफसोस नहीं होता, मेरी बकरी गई बोले तो गम शुरू, गम मेरा लगने के बाद होता, हाँ अरे एक बच्चे का इंतकाल हो गया, अरे अच्छा कर इतना बोलता था मुझे, और अगर मेरी बच्चे का इंतकाल, कितना फर्क पड़ जाता जमीन आसमान में। ऐसा पैसे चोरी हो गए क्या, किसके कैसा, मेरे पैसे चोरी, मेरा लगती है परेशान, क्या परेशान है लगा लेना है तो मेरा लगा ले, नहीं तो मेरा को काटो। जितने परेशानी लगा लेने का है मेरा बोल के लगा लो, नहीं अलग रहो, अल्लाह आपको वो गुस्सा करो जिन्हें कल भी अता फरमाएंगे कुछ मत पूछ। अरे हजरत जी, हजरत इजराइल अलैहि सलाम, हजरत फरमाते थे कि हजरत इजराइल अलैहि सलाम आ गए मेरे पास जान निकालने के लिए, जी फरिश्ता आ गया मलकुल मौत, क्या चले गुलाम मोहम्मद चल रहे नहीं चल रहे, अल्लाह का हुक्म आया यार रुमाल झटका चला, इंशाल्लाह इससे ज्यादा देर नहीं करूंगा, और जिंदगी के आखिरी हिस्से में जन्म की खुशूसी कैफियत हजरत आ गए थे, तो लोगों की आदत रहती है हजरत इनको पहचानते इनको पहचानते इनको पहचानते इनको पहचानते, उनकी कुपिया दादियां चाची जी चचाया रिश्तेदार ये वो रहता ना, एक औकात दो औकात तीन औकात पूछे तो उसकी औकात क्या हो, हजरत इनको पहचान है क्या, बल्कि मैं मेरी तरफ बच्चों की तरफ इशारा करके जमालदार की तरफ नवालदार की तरफ जलालदार की तरफ इशारा करके बोले इनको पहचानते हजरत आप क्या करना है, पहचान के पहचान के क्या करो, तुम पलटाते हो मुझे उधर से, ये तरह रुख है आखिरत का गलबा है ना आदमी के अंदर, आखिरत वाली फिक्रों का गलबा हो उसको याद करना हो, इतना याद करना हो कि दिल में हम रच बस जाना, और आज बिल्कुल उल्टा है मामला, वाली साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे अजीब दावे इस्लाम है तेरा मुस्लिम कहीं है तू वो कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ वो तुझ में और तू उसमें रसे बसे ऐसा, वो तुझ में और तू उसमें रसे बसे ऐसा, जहां हो तू हो वही ला इलाहा इल्लल्लाह, लाया इलाह का शब्द तो सुन रहे हैं आप लोग, साल डेढ़ साल से कितने कितने दिन हो गए आप साहब, हाँ एक साल तो हो गया होगा करीब, हाँ देखो आप सुन रहे हैं सबका बुरे नहीं हुए वो, आज रामोनु डिग्री का गया कातर से हजरत आगे बोल गए जी हक ताला शनु ही इशा थरवा तो फरमाए लका सिय के बोलो वो हम मिन निकर इल्ला उलाई का सिय वाला अल मुबीन, और गुनाह से तीन के तरीके में अल्लाह पाक ने कहा जी बलाय गुरुन अल्लाह इल्ला कलीला, मालूम ये हो के कतरत जिक्र ईमान की अलामत है, कसरत जिक्र ईमान की अलामत है, कसरत जिक्र सदाकत की अलामत है, सिद्क की अलामत है, सच्चाई की अलामत है। अब सवाल यह है कि आप ऐसा जिक्र कहीं को करना, हम सब कर इधर तो करो, अब दोनों जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सुभानअल्लाह व सुभानजी कलिमतन खफीफतन अलल लिसन सकीलतन फिल मीजान हबीबतन इलर रहमान सुभान अल्लाह बिहमदिहि सुभान अल्लाह लजी भी हो भी पढ़ो, बुखारी शरीफ की रिवायत है आखिरी रिवायत है, आप अगर सुनते रहते हैं बुजुर्गों के पास क्या करो मुहदसिन के पास पहुंच कर दो कलिमे है ना जुबान पर आस हल्के फुलके कलिमतन खफीफतन अलल लिसन दो कलिमे जुबान पर हल्के फुलके अदायगी में हल्के फुलके सकीलतन फिल मीजान तराजू में भारी खूब वजनी बेहद भारी और सकील बोझल करने वाले हबीब तानील रहमान रहमान को बेहद प्यारे सुभान अल्लाह व बिहमदिही सुभान अल्लाह अलअजीम, इतना आसान आसान जुमला दो जुमले सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ की ये आखिरी रिवायत में मौजूद है, वो हदीस आप याद कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर जो जिक्र आपको करना है पूरी रिवायत पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लाखों की है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल्अज़ीम, मत सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल्अज़ीम। हाँ, मगर वो कुछ मामूली जुमले नहीं होते हो। वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उनको उसका सबक भी दिए और उसके उसके दर्शों की तफसीलात भी समझाई, उसकी गहराइयां भी बताई, लेकिन बहुत जी बहुत मुख्तसर सी बात मैं आपसे बता दूं। फरमाया कि ये जो सुभान अल्लाह बिहम्दिही में अल्लाह की तस्बीह भी है, अल्लाह की तहमीद भी है, उसमें सुभान अल्लाह भी है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी है, और अल्लाह की अजमत का बयान भी। तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह है ना, ये जिस तरीके से किसी चीज को देखने के लिए आम तौर पर अब ऐनक लग गई है, और ऐनक के दो अच्छे दो शीशे होते हैं, ये दो आईने होते हैं, दो शीशे होते हैं ऐनक के, इसी तरीके से मारिफत आरिफ की भी ऐनक के दो अर्जी दो हिस्से हैं। इरफान जी, इरफान वाली जो ऐनक है, खुदा की पहचान की जो ऐनक है, उसके भी दो शीशे हैं। एक शीशे का नाम है सुभान अल्लाह और दूसरे शीशे का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तफसील सीखना है तो खादिम हाजिर है, कोई परेशानी हो लहन की बात नहीं, बहुत बस पालना है उनको बहुत आसानी के साथ। ये बहुत शॉर्ट और स्वीट जमाना है, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े मुजाहिदे करो बोले तो कोई भी नहीं करते, ना ना आना है ना जाना है, बैठे हुए पाना है। कहा जाते क्या हिमालय पहाड़ पे गए तो मिलते अल्लाह मियाँ जी, या पहाड़ों के हारों में गए तो मिलते, अरे नहीं वैसा कुछ भी नहीं है, ना आना है ना जाना है, बैठे हुए पाना है। वो दिल को नरम करना जरूरी रहता है ताकि उसके अंदर ईमान बता जाए। हाँ, बता जाती है दिल में, दिल का झुकाव आ जाता है, बशीर मुखबिन अल्लाजीन यज़कुरू अल्लाह वली सिफात उसमें पैदा हो जाती है। दिल का झुकाव, दिल में नरमी, रिक्कत कल्बिया जिक्र की कसरत से पैदा हो जाती है। वो करना जिक्र, अरे कितना करना होता है, लोग बोलते हैं अरे क्या दीवाना बोलते ना, उन्होंने कहा बोले दो, अब क्या कोई आदमी बीवी का आशिक हो गया तो नहीं बोले लो, आप क्या बोले, बोले तो बोले मेरे को जो रहना है वो रहूंगा, अरे उन जो रुका गुलाम है उन्हें फलां का ये जी उन्हें जायदाद का आशिक है, उन्हें फ्लैट का आशिक है, उन्हें प्लेन का आशिक है, उन्हें हवाई जहाज का आशिक है, उन्हें जब जी उन समंदरों को छानना चाह रहा ये है वो है, बोले तो आप वहां क्या हो। या अगर चलिए कोई जी फिल्मी स्टार अगर है और उसकी उसके जैसा रंग रूप अख्तियार कर रहा है, उसके जैसा लिबास, उसके जैसा हुलिया, उसके जैसी वाला खत्म, उसके जैसी सूरत हाल, उसकी है कलाइया कोई बना रहा है नौजवान जी बाजार में जा रहा, उसको बोलो फिलहाल फिल्म स्टार का नाम लेके बोले क्या रे उसके सड़का है रे तो बोले तो हाँ क्या बात थी यार। और अगर दुनिया हमको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलाम कह रहे हैं तो क्या उससे फर्क पड़ने वाला है, देने दो लोग गालियां कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कहने दो दुनिया को ये मोहम्मद का गुलाम है, ये दीवाने ये मजनून है, अहादीस मौजूद है, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मुस्नद में है, तिब्रानी में है, इब्न माजा में है, दर्र मंसूर में है। जिक्र करने वाले लोगों को अगर दुनिया ढेर मजमून कह रही है तो कोई परवाह की बात नहीं है, बिल्कुल अल्लाह हत्ता यकुल अन्नास अलमजनून, अल्लाह को इतना याद करो कि दुनिया कहे कि यह दीवाना है, दीवाना पागल है, ये लोग पागल है, बोले तो बहुत अच्छा है कि नस्बत उससे मुंसलिक हो गए, थोड़ी बहुत गवाहियां तो हो ही जाएंगी, जैसा इन्हों भी गवाह है, उन्होंने भी गवाह है, उन्होंने भी गवाह, कुछ फर्क नहीं पड़ता लोगों की तरह कहने। हम इसीलिए भाई अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लदीना जी इसी कुरान मजीद में मौजूद है, फल कुरूनी अलकुरकुम मशकुरूली वला तकफुरून, और एक जगह है इन्नल मुमिनीन इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानुहुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जिक्र का जब अल्लाह ताला को याद करते हैं तो दिल हिल जाते हैं और अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है तो ईमान में इजाफा होता है। हाँ, ईमान में इजाफा होता काम होता होती कोई नजर आने वाली चीज है क्या इजाफा होने कम होने बोल के लोग। लेकिन आज की दुनिया में बुखार को भी नाप रहे तोड़ रहे हैं, हवा को भी नाप रहे तोड़ रहे हैं, तो ईमान को नापे तोड़े तो क्या हो, बढ़ता भी है घटता भी। एक आदमी वो है जिसके पास ईमान के 77 शोबे, एक आदमी वो है जिसके पास ईमान के 70 शोबे जिंदा है। क्यों भाई, कब ज्यादा है नहीं बोलेंगे, इनके पास भी 77 है, इनके पास 70 है बोलेंगे। आपके पास 30 कम है तो इनके पास 40 है, आपके पास 50, आपके पास 50 हिस्से है ईमान के शोबे, बाकी कहाँ है साहब, और 27 शोबे और हिस्से कहाँ है। तो बहैसियत फिक्र, बहैसियत अमल और बहैसियत अखलास, उसके अंदर कमी और रियादती के एतबार होते हैं। आज जो समझने लगता है खुले तौर पर के साथ मेरा ईमान बढ़ रहा है, शरीफ है हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला की है, हदीस की बहुत सी किताबों में है, लफ्ज़ी तौर पर तो बहस हो सकती है लेकिन फ़ज़ाइल के वाक़ई यकीन ली जा सकती है, उसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है। फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कुछ लोगों के मजमे में निकले। खैर जी, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في حلقة من أصحابه في حلقة في حلقة के अंदर बैठ आए सरकार। आकर पूछा आपने मा अजल्लतकुम कौन सी चीज है जिसने तुम लोगों को यहाँ बिठाया, वो कौन सी चीज है जिसने तुम लोगों को यहाँ पर बिठाया। तो उन लोगों ने जवाब दिया أجلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما هدانا للإسلام ومن به علينا। हम अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं और अल्लाह पाक ने जो ईमान और इस्लाम की दौलत अता फरमाई है और जो एहसान किए हैं उसको याद कर रहे हैं सरकार। نذكر الله ونحمد الله على ما هدانا للإسلام ومن به علينا। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल कायम फरमाया, अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला अल्लाह, ये कसम जो बोलो, कसम जो करो इसके सिवा कोई और मतलब तुम्हारा था, क्यों बिठाए, किस वजह से तुम यहां पर बैठे, इसके सिवा कोई और मकसूद नहीं था। कहने लगे कालू जी अल्लाह मा अजलसना इल्ला अल्लाह, सरकार अल्लाह की कसम इसके सिवा कोई और बात नहीं है जो हमको यहाँ बिठाए हुए हैं, बस अल्लाह को याद करने की गरज से, उसकी तारीफ करने की गरज से बैठे। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नी लमा अस्तहलिफुकुम तहमतन लकुम, हासिल बात यह है कि मैं तुम्हारे होकर कोई तहमत बांधने के उन्वान से नाम की सबक करना था मैं, ये तुम लोगों से कसम नहीं लिया बल्कि कहा दरअसल ये वलकिन अतानी जिब्राइल व अखबरनी अन अल्लाह युवहिबकुम अल मलाइका, असल बात ये है कि जिब्राइल आए, उन्होंने इसकी फजीलत बताई और अल्लाह पाक फरिश्तों के पास तुम लोगों के बारे में बायस फख्र बात फरमा रहे हैं कि देखो मेरे ये बंदे जो मुझे याद कर रहे हैं, ये जिक्र किया। قالوا الله ما جلسنا ما جلسنا الا الله तुम्हारे ऊपर फख्र से बात कर रहे हैं तुम लोगों के बारे में, समझ में आया। एक और रिवायत सुनो बहुत मजी। एक मरतबा हजरत एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबा में आए, एक बैठे हुए थे, वैसा कई कुछ सहाबा थे, नजर डाली चारों तरफ और उसके बाद फरमाए हल हल फी कुम गरीबन, क्या तुम लोगों में कोई अजनबी आदमी है क्या, कोई अजनबी मुसाफिर अजनबी आदमी है, इस्लाम से हटा हुआ आदमी मुसलमानों के अलावा कोई और अहले किताब वगैरह कोई है क्या हो। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह नहीं कोई नहीं। तो फरमाया हमारा बेगल अगवा दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, हमारा हुक्म दिया दरवाजों के बंद कर लिए। वकाला इरफाऊ अपने हाथों को उठाओ, वकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सहाबा कहते हैं कि हम थोड़ी देर इसी तरीके फरफ़ेना अईदीना सहेतन, फरफ़ेना अईदीना सहेतन, थोड़ी देर इसी तरीके इसी तरह से बात सामने आई। फरमाया कि इन्नल्लाहा गफर लकुम, अल्लाह कद गफर लकुम बिला शुबा, अल्लाह पाक ने तुम लोगों को बख्श दिया है। अल्लाह ताला जब किसी को माफ कर देना चाहे तो कौन रोक सकते हैं भाई। हाँ, और उनकी माफ करने के तो ढंग अजीब और गरीब और निराले निराले कुछ बोलना। ये एक बुजुर्ग के बारे में आया, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके साथी जबरदस्त अहले इल्म थे, उन्होंने सोचा कि यार अगर वो साथी मेरे वो बुजुर्ग साथी मेरे साथ में आ गए, इल्म है बड़े बड़े जी, इल्म वाली शख्सियत है, बुजुर्गा ने दीन में से गुजरे हैं और ये अल्लाह में से गुजरे। तुरंत ख्वाब में उन बुजुर्ग को देखा और क्या किया मालूम है, सवाल किया और आपके साथ क्या मामला हुआ था, आपके साथ क्या मामला हुआ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुजूर में हाजिरी हुई। अल्लाह ने पूछा क्या लाया थे तुम, क्या लाए हे बंदी क्या लाया। उन्होंने कहा कि वो 55 हज लेके आया, 55 हज। अल्लाह ने कहा एक भी कबूल नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक ही 155 कुरान कुरान की तिलावत लेकर आया। तो अल्लाह ने कहा एक भी कबूल नहीं। अब वो नमाजा गिनाते रहे, जिक्र गिनाते रहे, तिलावत गिनाते रहे, हज गिनाते रहे, रोजे गिनाते रहे, जो समझ में आता था यार वो भूलते गए, जहां तक बस था बोल लिए, जब बस हो गए तो खामोश रहे। जी आप तआला की तरफ से कुछ नजर करम तक कुछ अन्नता देख लिया, या ये अल्लाह ने पूछा कि बोलो फिर और क्या लाए, क्या लेकर आए। अब्दुल मालिक आप तेरी रहमत की उम्मीद लाए हो बस और कुछ नहीं है, आप तेरी रहमत की उम्मीद लाए हो बस और कुछ नहीं है। कहा ये हुई ना बात आलम खदी वजमत अले के रहमती, मेरी रहमत तुम पर लाजिम जाओ सकती। आदमी क्या गुरूर कर रहा है, तस्वीर पढ़ के नमाजा पढ़ के जी लिबास से कर रहा है, कोई ना तिलावतों की कसरत से कर रहा है, कोई तलबियात की कसरत से कर रहा है, कोई नमाजों की कसरत से कर रहा है, कोई किससे करता है, कोई किससे करता है, कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह ताला मेहरबानी करना चाहते हैं तो ही रात तक मिलता है। रहमत का तेरी उम्मीदवार आया हूँ, रहमत का तेरी उम्मीदवार आया हूँ, मुंह ढांपे कफन से शर्मसार आया हूँ, चलने में दिया बारह गुनाह में पैदल ताबूत में कंधों में सवार आया हूँ। अल्लाह की रहमत ढूंढने बाद एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, वो इंतहाई गरीब हो गए थे, दूसरे बुजुर्ग ने साहब में देखा तो पूछा गया कि कैसे गुजरी, कहा कि भाई मजे की बात है, अल्लाह मियां बोला है, क्या रे क्या लाया है बंदे, क्या लाया? क्या बोले वालों, बुड्ढा हूँ क्या लाऊं? बोलो बुड्ढे मेरे बुढ़े आदमी से पकड़ दिया, आप पूछ रहे हैं क्या लाऊं? क्या बुड्ढा हूँ लाऊं क्या? अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है जा छुट्टी कर। जब अल्लाह पाक मौफिरत का तहाना खोल देना चाहते हैं या बख्शिश की बात पर आ जाना चाहते हैं तो बस वो हल्का सा हीला और बहाने तलाश करते हैं, मगर हमको चुनके मालूम नहीं कि कौन सा हीला और बहाना काबिल कबूल है, इसीलिए ये ताबड़तोड़ की दुष्पर्दा मशक्कतें झेलना है। किसी को खाना खिलाते रहे, किसी को पानी पिलाते रहे, किसी को हाफिल बना दे रहे, किसी को आलिम बना दे रहे, किसी को मुफ्ती बना दे रहे, किसी को आमिल बना दे रहे, किसी को दुआ वाला बना दे रहे, किसी को जिक्र वाला बना दे रहे, बहुत मुख्तलिफ अंदाज के काम है। अब समाजी खिदमत है, कल का खुदा की कुछ तो काम आओ, चलो भाई कोई ना कोई हीरा और बहाना मिल जाता है, इल्ला रात तक खोल लेते हैं। तो भाई अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि जो कोई शख्स इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह एक हदीस में है, जदीदु ईमानकुम, तुम लोग अपने ईमान को ताना किया करो। सहाबा ने पूछा कैसा जदीद ईमान है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम कैसे ईमान की तजदीद करें? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया قولوا مجھے بقول لا الہ الا اللہ اکثروا قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خوب قدر سے پڑھو خوب پڑھو خوب پڑھو اتنا پڑھ کم سے کم ستر ہزار کا ذخیرہ کر لو جلدی جلدی پڑھ کے زیادہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے ہاں ایک اللہ اللہ اس میزاد کی جو تلخین ہے نا ایک منٹ میں 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں एक मिनट में 100 बार सैकड़ों लोगों को पढ़वा दिया अब तक में जी। परसों के सफर में डॉक्टर इंद्रा को बता दिया ये एक मिनट में 100 मरतबा अल्लाह की तलखीन होती हो सकता है जिक्र। तब आप अंदाजा लगाइए 10 मिनट में 1000 होता है, एक मिनट में 100 बार तो 10 मिनट में 1000 मरतबा, और 24 घंटे में कितना वो आप कंप्यूटर से हिसाब कर ले। मैं उस मामले में जाहिल मुतला हूँ, वो जानता हूँ अंदर कुछ उस मामले में, मुझे कंप्यूटर वो खोलना भी नहीं आता, आना आप भी करने नहीं आता, पूरी जिंदगी दूसरों में मौको। तो मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने कितनी दौलत फरमाई है। हजरत अबू यजीद कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे ये रिवायत पहुंची कि जो कोई शख्स 70,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसकी मौफिरत होती है, और जिसके लिए वो दुआ करता है उसकी भी मौफिरत हो जाती है। जब ये बात हुई तो मैं 2 लकीरें किया, 2 70,000 पढ़ा। वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह भी 1,25,000 से ज्यादा दुरूद शरीफ लिखते थे, 1,25,000 से ज्यादा कलिमे तैयबा, 1,25,000 से ज्यादा इस्तिगफार, 1,25,000 से ज्यादा सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह अलअज़ीम, 1,25,000 की तरतीब बना लिखते थे। जब जुबान बराबर नहीं चलती थी तो लिखते बैठते, और फजर से लेकर 3 बजे तक कुरान मजीद की तकमील करते थे, अलिफ लाम मीम से वरना तक, दरमियान में हरीरा पीते थे, तहज्जुद से लेकर दिन में 3 हाफिज नहीं थे, हाफिज नहीं थे, उर्फी आलिम भी नहीं, इस्तलाही आलिम भी नहीं थे। अलबत्ता नाज से फरमाते थे, लोग मुझे तुम हाफिल है साहब आप जी, तो फरमाने लगे कि नहीं। लोगों ने कहा फिर क्या है? कहा कि हाफिलों का बाप हूँ। लोगों ने पूछा कि हजरत आप आलिम है क्या? मैं आलिम नहीं हूँ। फिर क्या है आप? तो आलिमों का बाप हूँ, जो पूछना है पूछो। 2 और 2 4 के तरीके से गुफ्तगु करते, एक मरतबा मैंने दारुल देवबंद के फरागत के बाद 1966 में मज़ाहिर उलूम सहारनपुर शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ा हूँ। 68 में इनके वालिद मौलवी हजरत मौलाना अब्दुल गफूर साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के पास लातूर जिले उस्मानाबाद में पढ़ा, 66-66 वहाँ मज़ाहिर में, 68 इन लोगों के यहाँ जी, और 69 और 70 में दारुल देवबंद से मेरी फरागत है, 71 और 72 में मौलाना अलीमिया की तौजुहान से कुछ अरबिया का, और खास तौर पर तफसीर के अंदर दर्द के लिए हजरत ने फरमाया कि तुम्हारा कुरान से खुसूसी लगा हुआ है, इसलिए आप जी तखसुस फी तफसीर कर ले ज्यादा अच्छा रहेगा। चुना चुन की इजाद पर हम अमल कर रहे थे, लेकिन मुजाकर खराब हो गया था तो रुक गए थे। कुछ अरसे के बाद अदब की तो सनद मिल गई थी, बाकी वहां नब्बे से मजीद की सनद नहीं मिल सकी थी। तो एक मरतबा वालिद मस्जिद रहमतुल्लाह से जो मैंने कहा कि हजरत ये शफात का मसला बोलो साहब आपको, मैं शफात का मसला बताइए साहब आप। अरे मैं तुमने आप है मजाहिद से पढ़े हुए, लातूर में पढ़े हुए जी, दारुल गुरबन के पढ़े हुए, नजदुल उलमा के पढ़े हुए, आप शफात के ये मामूली मसला मेरे से पूछ रहे हैं। क्या कहेंगे हजरत आप छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बात बता देते हैं, वो लगने की खुसूसी मेहरबानी है। मैं चाहता हूँ कि आपकी जुबान से कुछ जुमले उस बारे में सुनो। अगर अच्छा सुनना चाह रहे हाँ ठीक ठीक है बता देते हैं। आज तक कुछ याद है बेटे पूछते हैं, कहा कि हाँ याद है। मैं पढ़ना शुरू किया अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क्युम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति वमा फिल अर्ज। पढ़ने के बाद मैंने हजरत ने कहा जरा आहिस्ता पढ़ो, ये है शफाअत का आधा मसला। जब मैंने कहा इल्ला बिइज़्निही तो फरमाया रुक जाओ, ये है शफाअत का मुकम्मल मसला। किताबों कितने भी पढ़ लिया होगा आधा मसला शफात का, इल्ला बिज़्निही ये कंप्लीट मसला है शफात का। जिक्र के बाद में भी शफात की बात आ गई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन असअदुन नास यौम अल क़ियामा बिशफाअतिक या रसूलुल्लाह। सरकार हश्र के मैदान में सबसे ज्यादा सआदतमंद इंसान, लोगों में सबसे ज्यादा सही और खुश नसीब शख्स जिसको आपकी शफात में सर है वो कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा तुम्हारे हदीस के बारे में तुम्हारे हिर्स की वजह से मुझे इस बात का अंदाजा था कि ये सवाल तुम ही सबसे पहले करेंगे और ऐसा ही हुआ। इस बात को याद रखो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहा अखलास के साथ अल्लाह तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपना शफी बनाएगा हजर के मैदान। तो भाई देखो असअदुन नास अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है मुस्तनद हदीसों में, सिहाह सित्ता की हदीसों में, बुखारी मुस्लिम में भी मिल जाना चाहिए। आप अगर कोशिश करें अल्लाह ने मौका अता फरमाया है तो एक जिक्र और फिक्र की फिजा है, फिजा चूंकि जिक्र के साथ एक फिक्र का अटैचमेंट है इसलिए इतनी सी बात जहन में रहे कि भाई ये जिक्र जो है ना दो किस्म का होता है, एक होता है जिक्र मुतल्ला और एक होता है जिक्र मुकय्यद। जब से हम जो बात किए ना जिक्र मुकय्यद की है, क्या पढ़ना कितना पढ़ना, 100 बार पढ़ो ये पढ़ो, 1000 बार पढ़ो ये पढ़ो, 10000 पढ़ो बार पढ़ो ये पढ़ो, ये ऐसा इसको बोलते हैं जिक्र मुकय्यद। जिक्र मुतलक क्या है बोले तो अगर पहले मरहले में है सुलूक के पहले दर्जे में है तो अल्लाह ही के मालिक अल्लाह के मालिक के हकीकी होने का और कायनात के हर दर्जे के ममलूक होने का शूर जिंदा रहना, ये है पहले दर्जे का मुजाहिदा। और अगर सुलूक का दूसरा मरहला तय हो रहा है तो अल्लाह ताला के फाइल हकीकी होने का शूर जिंदा रखना और अपने को कासिब समझना, खल्क़े फ़ेल की निस्बत अल्लाह की तरफ करना, वल्क़द्रु ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाह, खल्क़े फ़ेल की निस्बत अल्लाह की तरफ करना और कस्बे फ़ेल की निस्बत अपनी तरफ करना, मुजाहिदा इतना करना कि जी अमल सालेहा बातनी आसान हो जाए। और तीसरे मरहले का मुजाहिदा ये है कि अल्लाह को मौसू बसिफाते कमाल समझना और सारी मखलूकात को मखलूक बसिफाते नाखिसा समझना, एक तीसरे दर्जे का मुजाहिदा है। और चौथे दर्जे का मुजाहिदा क्या है जी, अपने को वजूद रहना से खाली समझना जी, मेरे अंदर जो अना है ना वो मेरा नहीं होता। ये सूफिया जो आखिर में चल के बात करते ना, बहुत नाजुक बात बता रहा हूँ, बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, बहुत तहकीक की बात बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ वजह है लेकिन उसका खुलासा यही है कि जी मेरा की निस्बत दुरुस्त होना इससे दीन दुरुस्त होता है और मैं की निस्बत ठीक होना ये मारिफत का रास्ता खुल जाता है। मेरा की निस्बत खुलने से दीन का रास्ता खुल जाता है और मई का रास्ता खुलने से मारिफत का रास्ता खुल जाता है। जो मई जितने आए ना सब मई से। अब यहाँ पर जी 200-250 मर्द है, 250 औरतें हैं, 500 मर्द औरतें हैं ना भाई, जितने भी आए सब आप आए थे तो हम यहाँ आया हूँ, आप आए थे तो हम यहाँ आया था। हर आदमी मई बोल रहा ना जी, वो जी तसव्वुफ में ये समझाते हैं कि वो मई मुतअद्दद नहीं, इतना है सब वो मई अलग अलग नहीं, वो एक ही जो इसीलिए हाँ इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों के नस्से मुबारक तो नस्से कुल कहते हैं, उसी निस्बत से उसी मुनासिबत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को कल्ब कुल कहते हैं, उसी मुनासिबत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्ल मुबारक को अक्ल कुल कहते हैं, इसी बात पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को रूह कुल कहते हैं, इसी बात पे खल्क और हक के दरमियान में राबता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी बात पे बरज़ख़े कुबरा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक और खालिक के दरमियान। जरूरत इस बात की है कि कुल जिक्र और फिक्र का इंतजाज हो, अल्लाह को फिर दे जो कुछ कोई देर बात कर सुने अल्लाह की रात आपको गुरु शरीफ करिए दुआ करिए। हाँ जिक्र कर लेंगे नहीं तो तुमने मुंडिया मिलाते एक मशरे को एक मगरब لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كافتا بدن يا الله ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کرو میں دل کی سیاہی چھوڑ کے رکے جائی مالی اب تکرو میں فقر میں شاہی شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ لا متناہی شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ لا متناہی کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کر پشت بناہی شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ سحر ہو اللہ 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 اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نفر قلوبنا بنور معرفتك ابدا ابدا یا اللہ نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ پنجہ غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ پنجے تم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شام میرا بس اب تو الہی شام سہر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم تسلیما بلغہ تیری فہم سے عالی وصفہ تیرا عقل سے بالا لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں ہے جاننے والا تیرا تصور روح کی لنت تیرا تصور دل کا اجالا نطق نے میرے چھون لیے لب نام تیرا جب منہ سے نکالا شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن له حق علينا ولمن نصر بدعاء. اللهم اغسل وبلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه صواب متصلا بالقبول والرضوان والروح والريحان الى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح جميع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين ثم الى ارواح جميع الاولياء رحمهم الله اجمعين لا سيما الى روح ابينا غلام محمد والى اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا سامي الاصوات يا سامي الاصوات يا مجيب الدعوات يا مفرج الكروبات يا مجيب الدعوات يا مفرج الكروبات يا غافر الزلات يا منزل البركات يا غافر الزلات يا منزل البركات. اللهم افتح على قلوبنا لذكرك واتم علينا نعمتك واصبر علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اغفر ورحم وتجاوز ما تعلم انك انت الاعز الاكرم. الا غنوبك ما فرما وتعيون قدر بزر فرما دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. الا جو مشہور ان کے شہر کو توڑ دے یا صرف رضا ان کے آصف کو دفن فرما دے. الا جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو بے روزگار انہیں حلال روزی عطا فرما دے. الا مدارس عربیہ اور مکاتب قرآنیہ اور حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما. الا مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ اور حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما. الا علم اور ذکر کی دولت سے مالا مال فرما. الا قلوب کو انوار سے معمور فرما. الا ذہنوں کو الا اور قلوب اور زبانوں کو تلاوت قرآن سے معمور فرما. الا اخلاص للہیت کے پاکیزہ جذبات عطا فرما. ایمان کامل اور یقین صادق عطا فرما. نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. الا علم اور ذکر کی دولت سے مالا مال فرما, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا توقع رکھتے ہیں, اللہ ان تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ جو غریب ان کو امیر بنا دے, جو امیر ان کو غنی بنا دے, جو غنی ان کو سخی بنا دے, جو سخی ان کو پرہیزگار اور متقی بنا دے. اے اللہ جو پرہیزگار ان میں خلاص عطا فرما, اور جو مخلص ان استقامت نصیب فرما. مرتدم غیب سے مدد کیجیے, ساتھی مان کے اٹھا لیجیے, جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ. لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وقت باللہ وصدر وسلم والعافی علینا وعلا عبیدی الحجاج والغزاة المسافرین فی برلک وبحرک من امت محمد نجمعین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت ما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.